आप सबको नए साल की खुशियां मुबारक हों और खुदावंद के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। यकूब का आम खत, उसका पहला बाप, हम उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। और यहां पर खुदा का बंदा यकूब कहता है, खुदा के और खुदावंद यीशु मसीह के बंदा यकूब की तरफ से उन 12 कबीलों को जो जा बजा रहते हैं सलाम पहुंचे। ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए फयाजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करें, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहरों की मानद होता है, जो हवा से बहती और उछलती हैं। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेकयाम। अदना भाई अपने आला मर्तबे पर फख्र करे, और दौलतमंद अपनी अदना हालत पर, इसलिए कि घास के फूल की तरह जाता रहेगा, क्योंकि सूरज निकलते ही सख्त धूप पड़ती और घास को सुखा देती है, और उसका फूल गिर जाता है और उसकी खूबसूरती जाती रहती है। इसी तरह दौलतमंद भी अपनी राहों पर चलते चलते खाक में मिल जाएगा। मुबारक है वो आदमी, मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत रखने वालों से वादा किया है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब की हौसला अफजाई हो, आमीन। इन 12 आयात को पढ़ने का मकसद ये है कि हम पिछले दिनों से खुदावंद के हजूर सीख रहे हैं ना मुरझाने वाले सेहरे के बारे में, गवाही का वो सेहरा जो गवाही देने से ईमानदारों को हासिल होगा, रासबाजी का ताज, जलाली ताज, शादमानी का ताज। और आज हम उस पांचवें ताज पर गौर कर रहे हैं, जिसे क्या कहा गया है, जो कोई आजमाइशों पर गालब आएगा उसे क्या मिलेगा, जिंदगी का ताज मिलेगा। इसी ताज का जिक्र हमें मुकाशवा 2 बाब उसकी 10 आयत में मिलता है, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुम्हें जिंदगी का ताज दूंगा। सो ये ताज आजमाइशों में वफादार रहने का क्या है, अजर है। कल हमने देखा था कि खिदमत में वफादार रहने से हमें क्या मिलेगा, अजर मिलेगा। हर पासबान को उसकी खिदमत का अजर मिलेगा। आज वो दिन है कि हम अपनी जिंदगी में देखें कि सारे साल में हमारी जिंदगी कैसी गुजरी, हमने पिछला साल कैसे गुजारा। वैसे ही आज मैं भी गौर कर रहा हूं कल रात से कि पूरे साल में क्या क्या वो काम जो खुदावन ने करने को कहे किए, कितने काम किए और कितने कामों में खुदा को ना कही, कितने कामों में खुदावंद खुदा की मर्जी को पूरा किया और कितने कामों में अपनी मर्जी को पूरा किया। इसका हिसाब मैं दूंगा, आप अपने साल का हिसाब खुद देंगे। सो खुदा का बंदा यकूब कहता है ईमानदारों को जो जगह ब जगह बसे हुए हैं कि जब तुम आजमाइशों में पड़ो तो इसे क्या समझो, खुशी की बात समझो। आपको पता है एक अरान में पादरी को जो कैद खाना में बंद है, वो इसलिए, जिस तरह मैंने यहाँ पर स्कूल शुरू किया है, खुदा ने मुझे कहा कि यहाँ पर ये खिदमत, उसने भी अरान में जाकर एक स्कूल शुरू किया, वहाँ पर बच्चों को मसीही तालीम देना शुरू की, और उसके बाद उसे क्या डाल दिया, कैद खाना में डाल दिया। जो वो खुद अकेला कैदखाना में, उसका सारा खानदान क्या है, उससे दूर है। तो वो इस आजमाइश को क्या समझता है कि खुदावन खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है और ऐसा कर ही रहा है। उसके वसीला से उसे एक कैदखाना में डाला गया, जहां पर कहते हैं कि बहुत गंदी तबीयत के जो मुजरम थे उसमें डाला गया। उन मुजरमों में जब उसे भेजा गया तो उसने क्या किया, मसीह की गवाही दी, अबादत की, बर्दाश्त की, बर्दाश्त की, बर्दाश्त की, और 17 के 17 कैदियों ने क्या कर लिया, यीशु मसीह को कबूल कर लिया। जब तुम्हारी आजमाइश हो, जब तुम दुख तरह तरह का उठाते हो, तो इसे घबरा ना जाओ, बल्कि इसे कमाल खुशी की बात समझो। इसीलिए हम ईमानदारों को शक नहीं करना चाहिए, हमें शक नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरा ईमान रखना चाहिए जिंदगी के हर एक हिस्सा में। यहां पर ईमानदारों की उस हालत को बयान किया गया है जिसमें बेयकीनी पाई जाती है, कि अगर कोई बंदा ईमान में शक रखता है तो वो समंदर की लहरों की मानद है। समंदर की लहरों पे शायद आपको अभी जाने का मौका नहीं मिला, कि जब आप समंदर के किनारे पर खड़े होकर देखेंगे तो हवाओं से उसकी लहरों को कभी इधर कभी उधर, और वो उछलती बहती रहती हैं, वो कायम नहीं रहती। और अगर आप अंदाजा लगाना चाहते हैं तो कभी टीवी में किसी ऐसे प्रोग्राम को या रावी या समंदर पर जाने का मौका मिले तो वहां पर आपको यह नजारा मिलेगा। सो खुदा का बंदा यकूब कहता है कि ईमानदार अगर शक में बह जाए तो उसकी हालत क्या है, समंदर की लहरों की मानद है। और ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा। मिलेगा का लफ्ज क्या है, मुझे कुछ अजर, कुछ सिला, कुछ बदला मिलेगा। सो हम ईमानदारों को शकी नहीं होना चाहिए, खासकर ईमान की बातों में। बहुत दफा शक आएगा, हमें तौमा रसूल की तरह शक करना पड़ेगा और कहेंगे कि क्या वाकया ही वो जिंदा है। लेकिन जब हमारा शक दूर हो जाए तो फिर हम तौमा की तरह मजबूती से अपनी हयाती में उसके नाम की क्या करें, तबलीग करें। तौमा एक दौर में शकी था और वही एक दौर में क्या हुआ, खुदा का खादम बना, और उसने एशिया के तमाम इलाकों में जाकर क्या की, खिदमत की। टैक्सले में, एशिया का जो शहर है, पाकिस्तान का शहर टैक्सला में, तोमा रसूल ने जाकर क्या की, खिदमत की। हिंदुओं में, सिखों में, हर एक मजहब में उसने जाके क्या की, तालीम दी। इसलिए खुदा का बंदा यकूब कहता है कि हमारी जो दौलतमंद है, शानो शौकत आरजी है, इसलिए हमें उस अबदी खुदा की तरफ देखने की जरूरत है। इसलिए आज 12वीं आयत में से हम सीख रहे हैं कि हम जब उसकी हजूरी में खड़े होंगे तो हर एक को उसके काम के मुआफिक अजर, बदला, सिला, अनाम और क्या मिलेगी, मजदूरी मिलेगी। जो कुछ हम यहां पर जमीन पर करेंगे उसका बदला मिलेगा। सो मुबारक आदमी कहा गया है। 12वीं आयत में क्या लिखा है, मुबारक है वो शख्स, या कह सकते हैं मुबारक है वो आदमी, या मुबारक है वो बंदी, मुबारक है वो बंदा जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। खुदा वादा करता है, वो वादों में सच्चा खुदा है। सो ये खुदा का बंदा यकूब, जब हम इसकी हिस्ट्री को देखते हैं, खुदावन यीशु मसीह का जिसे कह सकते हैं सुतेला भाई है। और इस यकूब ने, जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, यीशु मसीह का पहले पहले यकीन ना किया। जब हम यूहन्ना की अंजील को देखते हैं तो वहां पर हमें जिक्र मिलता है कि उसके भाई भी उस पर यकीन नहीं करते थे। यीशु मसीह के भाइयों में से यकूब और यहूदा, खासकर यकूब, उसने यीशु पर यकीन नहीं किया। उसने कब यकीन किया, जब यीशु मसीह मर गया, मुर्दों में से जी उठा और सब पर जाहिर हुआ। और वहां पर जब हम देखते हैं करंथियों 15वां बाब, 15वां बाब, वहां पर इसी यकूब का हमें जिक्र मिलता है, कि जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो इस यकूब पर जो आज हमें सबक दे रहा है, जो उस कलीसिया को सबक दे रहा था कि शकीना बनो। जैसे एक दौर में मैं शकी था, जैसे एक दौर में मैंने शक किया और अपने खुदावंद मनजी पर यकीन नहीं किया, तुम भी ऐसे ना बोलो। पहला करंथियों 15वां बाप जब हम उसकी देखते हैं 3री आयत से, तो पालूस रसूल यहां पर कहता है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वो ही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची, कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के वास्ते मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। तो यहां पर क्या लिखा है, और कायफा को, कायफा यानी कि पतरस को, पतरस को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 12 उन शिगिर्दों को जो उस दौर में मौजूद थे दिखाई दिया, फिर 500 से ज्यादा आदमियों को दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाज सो गए। और आगे क्या लिखा है 7वीं आयत में, फिर यकूब को दिखाई दिया। ये यकूब कौन है, खुदावंद यीशु मसीह का सौतेला भाई, जिसके बारे में फकी फरीसी यीशु मसीह से क्या कहते थे, जब यीशु मसीह ने अजीब मोजज़े, अजीब काम, शकी लोगों का शक दूर करना शुरू किया, लंगड़ों को चलाना शुरू किया, मुर्दों को चलाना शुरू किया, तो वहां पर लोगों का ये क्या था, बयान था। मेरे साथ देखें मत्ती की अंजील, मत्ती की अंजील, वहां पर खुदावंद यीशु मसीह के खानदान के बारे में हमें जिक्र मिलता है। मत्ती की अंजील उसका हम जब 13वां बाब पढ़ते हैं, 13वें बाब की 55 आयत में, यहां पर खुदावंद यीशु मसीह अपने वतन में आकर इबादत खानों में तालीम देने लगा और हैरान कुन बातें और हिकमत की बातें करने लगा और मोजज़े होते थे। तो 55 आयत में लिखा है, क्या ये भड़ाई का बेटा नहीं, यीशु मसीह को कहते थे, क्या ये भड़ाई का बेटा नहीं, और इसकी माँ का नाम मरियम और इसके भाई यकूब और यूसुफ और शमाउन और यहूदा नहीं। सो लोग यीशु मसीह पर क्या लगाते थे, ताना लगाते थे कि ये अदना खानदान से है, ये किसी बादशाह खानदान से नहीं है, ये मालदार या दौलतमंद नहीं है। लोग उस पर क्या लगाते थे, जब वो हिकमत की बातें करता था तो कहते थे ये भड़ाई का बेटा नहीं जो लकड़ी का काम करता है, ये मरियम का बेटा नहीं जिसके बेटे यकूब, यूहन्ना, पतरस, यूसुफ और यहूदा है। सो इसलिए यकूब खुदा का बंदा ईमानदारों को कहता है, बर्दाश्त करो। इस यकूब को बाइबल मुकदस में हमें 3 यकूब का जिक्र मिलता है, एक जब्दी का बेटा यकूब जिसे तलवार से मारा गया, ये यकूब यीशु मसीह की गवाही में कायम रहा और इसे क्या किया गया था, संसार किया गया था, इसे मारा गया था और इसने मसीह के लिए क्या की, बर्दाश्त की। सो हम ईमानदारों को हर हालात में बर्दाश्त करने की जरूरत है, और हमारी बर्दाश्त ऐसे नहीं होगी, हमारी बर्दाश्त तो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से आती है। जैसे यकूब एक वक्त में शकी था और वो खुदा का ऐसा खादम बना के उसने जाकर कलीसिया को सच के बारे में बताया, तोमा रसूल शकी था जो कहता था कि मैं जब तक यीशु मसीह की पसली और उसके हाथ के मेखों के जो निशान है उनको, कीलों को ना देख लूं, मैं यकीन नहीं करूंगा। अगर आज आप शकी हैं तो शकी बहुत अच्छी हालत है, शक कर रहे हैं तो जरूर करें, लेकिन जब शक दूर हो जाए तो फिर उसकी गवाही देने की जरूरत है। तोमा की तरह, यकूब की तरह, जो एक दिन एक दौर में यीशु मसीह पर यकीन नहीं रखता था। मत्ती यूहन्ना की इंजील उसके गालबन 7 या 8 बाप में हमें यह जिक्र मिलता है कि यीशु मसीह जब मौजज़े करता था तो उसके अपने भाई उस पर ईमान ना लाए। इसलिए हमें अपनी जिंदगी के इस बेड़े को और उसके रुख को बदलने की जरूरत है। शकी बंदा समंदर की लहरों की मानद है जिसका कोई ठिकाना नहीं। अगर हम शकी हैं तो हमारा शक यीशु मसीह दूर कर सकता है। इसलिए हमें आजमाइशों में वफादार रहना है। हो सकता है आज आप पर आजमाइश हो माली हालात की, हो सकता है आज आप पर आजमाइश हो आपके घर में बीमारी हो, हो सकता है आपकी आजमाइश हो रही हो कि आपने कोई दरख्वास्त खुदा के हजूर रखी है और आप दुआ पर दुआ किए जा रहे हैं और जवाब नहीं मिलता, और आपका पड़ोसी कहता है कि छोड़ो खुदा को, आसानी का रास्ता ये है, आओ किसी बुजुर्ग के पास जाएं, वो दुआ करेगा, वो हलवा लेगा, वो ये लेगा। तो अगर आपके ईमान की आजमाइश हो रही है तो उसमें वफादार रहें, उसमें वफादार रहें। यूसुफ अपनी आजमाइश में वफादार रहा तो खुदा ने उसे कैद खाना से निकाल कर तख्त पर बिठाया। खुदा का बंदा यूसुफ, पदेश की किताब में वहां पर हमें जिक्र मिलता है, और वहां पर वो ये कहता है कि जो कुछ मेरे साथ हुआ इसलिए हुआ ताकि लोगों की भलाई हो। अगर आप आजमाइश में हैं तो आप जब आजमाइश से निकलेंगे तो आप दूसरों के लिए क्या ठहरेंगे? गवाही। यकूब एक वक्त में शकी था, बेईमान था, खुदा पर ईमान नहीं रखता था। जब उसने ईमान लाया तो क्या किया? ईमान की बुनियादी की। सो हमें अगर शकी हैं तो हमारा शक उसने दूर किया है, तो उसकी गवाही देने की जरूरत है। अगर आजमाइश में हैं तो खुदावन में दुआ करते रहें ताकि वो हमारी दुआ का जवाब दे। हन्ना की तरह, हन्ना की दुआ ऐसी दुआ थी जिसमें सिर्फ हिस अल्फाज नहीं थे, ऐसे थी जैसे कि उस वक्त का जो काहिन था वो सोचता था कि शायद ये नशे में है। वो इतनी दुआ में मगन थी कि उसका दिल इतना टूटा हुआ था कि खुदा के हजूर उसने कहा कि मुझ पर रहम कर। उसकी जो कह सकते हैं कि सौंकने, जो उसके खामन की बीवियां थी उनके बेटे थे और उसे मैंने मारती थी, तो उसने खुदा के हजूर अपने टूटे दिल के साथ दुआ की और खुदा ने क्या किया? जवाब दिया। अगर आपका दिल आज टूटा हुआ है, आज आपका जो पुराना साल शक में गुजर गया है, तो उस बेड़े को बदलने की जरूरत है। आपकी सोच की सिमत अगर दाएं तरफ है तो उसे दुरुस्त तरफ लेकर जाने की जरूरत है। सो खुदावंद आपको और मुझे आजमाइशों में वफादार रहने का फजल बख्शे, ताकि हम उस जिंदगी के ताज को पाएं जो यीशु मसीह की हजूरी में हम उतार के कहेंगे कि बादशाहों के बादशाह, ये ताज तेरे लिए है। आए हम खुदा के सुर झुके और दुआ करें।